दीन गरीबी धार के कर्म करे निष्काम मंगत अंतरगत माही अरसे निर्मल धाम। दीन गरीबी धार के कर्म करे निष्काम मंगत अंतरगत माही अरसे निर्मल धाम। तो मनुष्य जन्म लेकर जो हमने जीवन जीने का तरीका सीखना था और अपनाना था उसके बारे में तो वाणी ये निर्णय कर ली है, दीन गरीबी धार के। हम जानते हैं कि दीन किसे कहते हैं, जिसके अंदर दीनता होती है अर्थात जिसके अंदर अहंकार नहीं होता उसको दीन कहते हैं, और गरीबी गरीब किसको कहते हैं, जिसके पास मेरा कहने को कोई वस्तु होती ही नहीं वो गरीब है। जैसे कोई भिक्षा मांग के गुजारा कर ले तो हम उसको भिखारी कह देते हैं, भिक्षा मांग के गुजारा कर रहा है उसके पास जीने का साधन भी नहीं। लेकिन यहां गरीबी का मतलब उससे नहीं, गरीबी के मतलब यह है कि मेरे मन के अंदर भाव ही नहीं बचा कि मेरा भी संसार में कुछ है, जो कुछ है प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं। इसीलिए वाणी कह रही है कारण कर्ता सो परमेश्वर गुरुमुख साजन जप मन भीतर। जो गुरुमुख साजन है अर्थात जो जिसका गुरुमुख जीवन है या ईश्वर प्रायण जीवन है वो मन के अंदर ईश्वर का जप तभी कर सकता है सही प्रकार से जब वो कारण कर्ता परमेश्वर को समझता है। हमारे कर्म करने का कोई ना कोई कारण होता है, वो कारण किस रूप में होता है, हमारे मन में कोई कमी महसूस होती है तभी हम उस कमी के कारण कर्म करने की कोशिश करते हैं। यहां वाणी कह रही है कारण कर्ता सो परमेश्वर, कारण भी वही है और कर्ता भी वही है। तो कारण कर्ता परमेश्वर है, इसी को भावी भी कहते हैं। मनुष्य के जीवन में जैसा उसका प्रारब्ध है वैसे कर्म बंधन में वो जीव इस शरीर के द्वारा मजबूर हो जाता है। तो शरीर क्या कर्म करेगा ये आपका प्रारब्ध निर्णय करता है, और प्रारब्ध दिया किसने है वो परमेश्वर ने दिया। फिर मेरे हाथ में क्या है, इसी को महर्षि रमण कह रहे हैं। कोई तो यात्री जब ट्रेन में यात्रा कर रहा है, अज्ञानी है वो, तो अपनी गठरी सिर पर रख लेता है, कहता है कि मैं अपना वजन खुद उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन इसके बारे में सत्य क्या है सब जानते हैं, गठरी यदि वो नीचे रख दे तब भी उसकी गठरी वहीं पहुंच जाएगी जहां वो ले जाना चाहता है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी सुख दुख के साथ जो व्यतीत होता है वो वैसा ही व्यतीत होगा जैसा प्रभु ने डिसाइड कर रखा है या प्रारब्ध ने डिसाइड कर रखा है। लेकिन हम कर्तापन के कारण अज्ञानता के कारण उस कर्म के बोझ को अपना कर्म समझते हैं, ये मेरा कर्म है, जब मेरा कर्म है तो निश्चित रूप से फल भी मेरा ही होगा। जीवन भर हम कर्म करते रहते हैं, फल भोगते रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि कर्म करने में और उसका फल भोगने में सुख होता है और दुख होता है। कर्म के द्वारा फल के द्वारा हमको सुख मिलता है या दुख मिलता है, और ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, इसका अंत आ जाता है, और हाथ हमारे क्या आता है सब जानते हैं कि बुढ़ापे में हर मनुष्य के अंदर निराशा ही बनी रहती है, कोई कर्म करने की सामर्थ्य रहती नहीं, जो लक्ष्य वो निर्धारित कर चुका था वो पूरे हो नहीं पाते, उसके जो संतान है जो परिवार है वो भी उसको उतना प्रेम नहीं करता जितना उसके अंदर आशा होती है, इच्छा होती है, क्योंकि सबको सुख चाहिए, तो जो भी उसके सुख में बाधक होगा उसके प्रति यही भाव आएगा व्यक्ति के अंदर कि किसी प्रकार यदि बुरा है किसी काम का नहीं रहा तो यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको उठा ले तो अच्छा है, भले ही कोई मुंह से ना कहे लेकिन अंदर से यही सोच बनी है। इसीलिए मनुष्य जन्म इस तरह से जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं मिला जिस तरह से हम संसार में रहकर व्यतीत करते हैं, पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन। तो वाणी कहती है कि दीन गरीबी धार के कर्म करे निष्काम, क्यों करे, मन्नत अंतर्गत माही परसे निर्मल धाम, इस देह के अंदर निर्मल धाम भी है जहां कोई विकार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, केवल आनंद है, केवल शांति, वो निर्मल धाम इस देह के अंदर मौजूद है, लेकिन मन के अंदर जब तक कामना बनी हुई है आप वहां तक पहुंचोगे कैसे, पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सारे सत्पुरुष सारे शास्त्र मनुष्य जन्म लेकर एक तरीका बताते हैं जीने का कि तूने संसार में परोपकारी भाव से जीवन व्यतीत करना है। जैसे कि शास्त्रों में आता है गृहस्थ जीवन में भी पतिव्रत धर्म सिखाया जाता है, लेकिन वहां भी हमारी अपने वासना के कारण अपने स्वार्थ के कारण वो धर्म केवल पत्नी के लिए रह गया, पति के लिए नहीं रहा। इसलिए महाराज जी ने समता विलास में फिर पतिव्रत धर्म भी लिखा और पुरुष धर्म भी लिखा, और वहां यह भी लिखा कि पुरुष यदि धर्म अनुकूल कर्म नहीं करता है तो पत्नी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, धर्म अनुकूल कर्म के लिए वो पत्नी मानने के लिए बाध्य है, अधर्म अनुकूल कर्म यदि पति कर रहा है तो उसको पत्नी मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन यहां पर दूसरी बात है कि निष्काम, क्योंकि कामना मन के अंदर जब शून्य होती है उस समय इसी मन के अंदर प्रभु मिलन की तड़प मैक्सिमम होती है, बड़ी गहरी तड़प होती है कि प्रभु से भेंट होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मन के लिए संसार में कुछ बचा ही नहीं, क्यों नहीं बचा, क्योंकि मन का जो कंट्रोल है वो बुद्धि के कमांड में चलता है, मन मेरा है ना, और महाराज जी कह रहे प्रेमी जीव यानी बुद्धि, मैं वो हूं जिसमें जीवन है, तो मेरा ही एक नाम बुद्धि भी है, तो ये जो बुद्धि है इसके कमांड में मन चलना चाहिए, लेकिन उल्टा हो जाता है, मन के अंदर संस्कार मेरे ऐसे बने होते हैं, उन संस्कारों के कारण मुझको संसार की वस्तुएं याद आती हैं, संसार की वस्तुओं के लिए संसार के सुखों के लिए मैं रोता हूं, उसी प्रकार रोता हूं जैसे एक बालक रोता है, उसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ लेकिन सब जानते हैं कि बालक संसार की चीजों के लिए कितना रोता है, रोते हम भी हैं तड़पते हम भी हैं, लेकिन शायद बाहर हमको चेहरे का देख के कोई नहीं कह सकता कि ये रो रहा है, अंदर से बड़े क्लेश के साथ जीते हैं, बड़े दुख के साथ जीते हैं, बड़ी बेचैनी के साथ जीते हैं। तो मनुष्य जन्म अपनी इस बेचैनी का इलाज करने के लिए हमको प्रभु ने दिया है, क्योंकि मैंने वो कला ही नहीं सीखी, वो विज्ञान ही सीखा जिसको अध्यात्म विद्या कहते हैं, कि मेरी बेचैनी का इलाज संसार में किस प्रकार से, अब किसी से भी पूछोगी अच्छी पढ़ाई करो अच्छा पैसा कमाओ सुखी हो जाओ, लेकिन पूरे विश्व में कभी इतिहास भी उठा के देख लो, कोई भी काल रहा हो, क्या मनुष्य कभी सुखी हो पाया? किसी भी काल में कोई एक मनुष्य का नाम आप बता दें, इसका सही इतिहास उपलब्ध है। एक मनुष्य भी धरती पर ऐसा नहीं हुआ जिसको आप कह सकते हो इसका जीवन सुखी था। तो मेरा जीवन कैसे सुखी हो जाएगा? असंभव है। इसलिए वाणी क्या दिशा बता रही है, हमको क्या डायरेक्शन दे रही है जीवन जीने का, देखिए रहा। पर का दुख नित करे निवारी, निष्काम कर्म साधे निरधारी। निर्धारी क्यों? सुख भोगने कोई आधार नहीं है वहां पर। निष्काम कर्म निरधारी, क्योंकि सुख यदि भोगोगे तो दुख ऑटोमेटिकली आएगा। ये विज्ञान है, इसको द्वंद कहते हैं। इसीलिए सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। इसलिए मनुष्य का मन चैन में कभी रह ही नहीं सकता। या यूं कहिए कि मनोकामना पूर्ण करके मैं कभी चैन से जी ही नहीं सकता। मेरे बारे में सत्य यह है। जब आप विवेक बुद्धि से इस बात को सीख लेते हैं, आपका निर्णय भी वही हो जाता है जो शास्त्र निर्णय है, तब आप प्रभु की भक्ति में दिल से लगते हैं और उसको जीवन का लक्ष्य बनाते हैं। तब आपको पता लगता है कि वास्तव में पूर्ण गुरु जब मुझको मिला, उसके बाद जब मैंने मानी, उसका विज्ञान जब मैंने सीखा, तब अंतर्यामी जो ईश्वर है, जो आनंद का सागर है, उसको हम सुख का सागर भी कह सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म में आनंद को ही सुख कहते हैं, इंद्रिय सुख को सुख नहीं कहते। तो वो सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, इस देह के अंदर मौजूद है, जिसका नाम ईश्वर है, तो उस सुख की प्राप्ति के लिए ये वाणी डायरेक्शन दे रही है कर्म की। क्या? कि पर का दुख नित करे निवारी, निष्काम कर्म साधे निरधारी। ये कब होगा? अपना सुख नहीं हृदय लाए, पर का दुख संताप मिटाए। अब ये विवेक बुद्धि के लिए डायरेक्शन है। अपना सुख नहीं हृदय लाए, अर्थात अपने मन के अंदर अपने सुख की फिक्र ना करे, पर का दुख संताप मिटा, दूसरे का दुख संताप उसका मिटाने की कोशिश करें। तो चाहे मैं परिवार में हूं, चाहे मैं समाज में हूं, मेरी कोशिश ये होती है। यहां आके पता लगता है कि पतिव्रत धर्म का मतलब क्या है। एक स्त्री जो बंधन में रहती है परिवार के अंदर, सारे परिवार वाले उसी से आशा करते हैं कि हमको सुखी करेगी, लेकिन कोई नहीं सोचता कि उसके सुख का क्या होगा। वो तो सबको सुखी करेगी, खुद तो दुखी रहेगी फिर। लेकिन बात ये नहीं है, पतिव्रत धर्म इसलिए बनाया गया था ताकि परिवार में रहते हुए स्त्री ईश्वर भक्ति कर सके और उस ईश्वर का बोध इस देह के अंदर कर सके। उस धर्म का मतलब ये था। ये कब हो सकता है? जब परिवार में उसके साथ में जो लोग हैं अंदर से सब दुखी हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है तो दुख होगा ही होगा आपके पास, आप उससे बच ही नहीं सकते। तो वो जो स्त्री है, वो उसको इसकी नजर इतनी तीव्र होती थी या तीक्ष्ण होती थी कि वो दूसरे के मन के दुख को पहन लेती थी। तो अपना सुख छोड़कर वो उसका दुख दूर करने की कोशिश करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि उसने निष्काम बनना है। जिसका मन निष्कामता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होगा, उसको याद किसकी आएगी? सीधी सी बात है, श्रुति याद। तो विवेक के बल पर उसने सीख लिया कि संसार की कोई भी कामना पूरी करके मेरा जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। ये मनुष्य के बारे में फाइनल निर्णय सब कुछ होगा। वास्तव में तो ये सारे जीव जगत के लिए, कोई भी जीव सुखी जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकता जो भी संसार में आया। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, वो इसको देख सकता है, इसको समझ सकता है, इसको सीख सकता है। इसीलिए उसको गुरु जो है पहले सादगी की बात कर रहा है। सादगी का मतलब यह है कि दुनिया की नकल करके इच्छाओं को बढ़ाने का, इच्छाओं को विकसित करने का कार्य करते हैं। मैंने उल्टा करना था, दुनिया को त्रस्त देखकर, दुनिया को बेचैन देखकर, दुनिया को दुखी देखकर मैंने दूसरा मार्ग सीखना था जो गुरु मुझे सिखाया, कि मैंने मनुष्य जन्म लेकर इच्छाओं को बढ़ाना नहीं था, इच्छाओं को कम करने के मार्ग पर मैंने चल रहा। तो साध्वी का मतलब है इच्छाओं से मेरा कैसे छुटकारा हो, इतना छुटकारा हो जाए कि केवल जो मेरी शरीर की मूलभूत आवश्यकता है, कहीं रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, बाकी मैं प्रेम से ईश्वर की याद कर सकूं जिसके कारण मेरा जीवन सफल होना है। उसके लिए दो चीजें थी, दूसरे का दुख देखे, उसका दुख दूर करने की कोशिश करे, अंतर्यामी प्रभु की याद करे और केवल अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ण कर ले। ये है, चाहे आप इसको सन्यासी जीवन कह लीजिए, चाहे इसको आप गृहस्थ जीवन कह लीजिए, लेकिन यही भक्त का असली जीवन है। और जो भी भक्त आप जानते हो इतिहास के अंदर, उसने इसी प्रकार का जीवन व्यतीत किया। जो भी भक्त आप जानते हो, चाहे वो महल में है, चाहे वो राजा क्यों नहीं हुआ, लेकिन अंतर का जो जीवन था उसका, वो यही जीवन था। शरीर की मूलभूत आवश्यकता उसने पूर्ण की, और केवल यदि राजा है तो समाज की लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे उनके दुख दूर होंगे, उनके परोपकार के लिए उसने जीवन व्यतीत किया। और अंतर्यामी प्रभु की उपासना की, क्योंकि मनुष्य जन्म उसके दर्शन के लिए ही हमको मिला है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मतलब होता है कि मंगत अंतर्गत माही परसे निर्मल धाम, वो धाम, वो मंजिल जिसमें कोई मल नहीं है, विकार नहीं, अर्थात कोई बेचैनी नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसी को हम परमेश्वर कह देते हैं, उसी को हम आत्मा कह देते हैं, उसी को कई बार हम ईश्वर कह देते हैं, कि विभिन्न नाम उसी के हैं। तो वो मैं इस देह के अंदर जान सकता हूं, उसका अनुभव कर सकता हूं। जिसने भी उस ईश्वर का अनुभव किया, मैं कितनी श्रद्धा से उसका नाम लेता हूं, कितनी श्रद्धा से उसकी बात सुनता हूं, कितनी श्रद्धा से उसकी बात पढ़ने की समझने की कोशिश करता हूं। तो मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी श्रद्धा को तो देखू। माँ जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, क्यों है तुम? जब हमने उनकी बात मानी ही नहीं है तो उनकी श्रद्धा का क्या फायदा है? तो गुरु से हमने वे ऑफ लाइफ सीखनी होती है, जीवन जीने का तरीका सीखना होता है। तो मैं देखा देखी एक दूसरे को देख के लक्ष्य बना लेता हूँ, एक खूब पैसा कमा रहा है, जितना टाइम है सारा एजुकेशन में पैसा कमाने में खर्च कर दे रहा है, इसी को विकास करके देख रहा है। कभी उसने यदि दो वक्त का नियम बनाया था पूजा पाठ का, एक घंटा सुबह, एक घंटा सिमरन, सायंकाल सिमरन करने का, वो भी धीरे धीरे छोड़ दिया उसने। जब पैसे में सफलता मिली तो पूरा समय उसने उसी में ही खर्च कर दिया। अब बताइए, मिला था मानव जन्म मन की सत्ता को खत्म करने के लिए। मन की सत्ता को खत्म करने के लिए क्यों? क्योंकि मन के अंदर संकल्प विकल्प, मन के अंदर संस्कार, हम सब जानते हैं कि हमारे भोगों के होते हैं। संसारी सुख मिले इसके संस्कार हम पूर्व जन्म से लेकर आते हैं। तो इन संस्कारों को कौन खत्म कर सकता है? इन संस्कारों को यदि कोई खत्म कर सकता है तो केवल सतबुद्धि कर सकती है। जब मैं जीव हूं, मैं जब बुद्धि हूं, तो यदि मेरा विचार, मेरा निर्णय शुद्ध है ही नहीं तो मन को कंट्रोल कैसे करूंगा मैं? जिस प्रकार एक छोटा बालक घर का अपने मन को बिगाड़ रहा है, माता पिता जितनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जितने ज्यादा खिलौने उसको दे रहे हैं, जितने ज्यादा घुमा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसके मन को हम बिगाड़ रहे हैं, इसके अंदर भोगों के संस्कार हम इकट्ठे कर रहे हैं। आगे चलकर ये कितनी मुसीबतें उठाएगा, ये बात माता पिता के होश में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने खुद आध्यात्मिक जीवन व्यतीत नहीं किए, इसी में वो जीवन की अपनी सफलता समझते हैं, इसी में बच्चों के जीवन की सफलता समझते हैं। तो अब बताइए, कौन हमें सिखाए? इसीलिए ये वाणी प्रभु ने कृपा करके, जो अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, प्रभु से किसी ने कहा नहीं, प्रभु हमारे मालिक है, हमारे जीवन है, हमारी चेतना है, तो उनसे नजदीक हमारे कौन हो सकता है। तो वो प्रभु मैं कहां दुखी होने वाला हूं वो जानते हैं, इसीलिए मेरे कल्याण के लिए गुरु रूप में अवतार लेते हैं, मेरे कल्याण के लिए वाणे के रूप में ये ज्ञान प्रकट करते हैं। और मैं इसकी क्या कीमत अदा करता हूं मैं सब जानता हूं। हम में से कितने ऐसे यहां बैठे होंगे जिनका जीवन पहले शायद अच्छा था, लेकिन सांसारिक विकास करके यदि सतबुद्धि से देखें तो मैंने अपना जीवन पहले से ज्यादा बिगाड़ लिया, समय ही नहीं रहा उस कार्य के लिए जिस कार्य के लिए ईश्वर ने ये कीमती मानव जन्म मुझको दिया था, इसलिए समय नहीं बचा, फिर भी मुझको होश नहीं आ रही है। मैं यही समझ रहा हूं मैं बड़ा आदमी हूं, हर समय बिजी रहता हूं, बड़ा काम का आदमी हूं, मेरे पास फुर्सत ही नहीं। अब बताइए यदि ईश्वर आपके सामने खड़ा हो जाए या गुरु आपके सामने खड़ा हो जाए क्या आशीर्वाद देगा वो आपको? सुखी रहो, इसी प्रकार कार्य करते रहो, सफलता प्राप्त करते रहो, यह आशीर्वाद देगा? मेरा विचार करके जो मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग करके, यही कहें अपनी सांसारिक बुद्धि का उपयोग करके जो जीवन की रचना खड़ी कर दी, इसको देख के मैं खुश होता हूं। सत्य तो यह है यदि मेरे अंदर सद्विचार है तो मेरे अंदर गहरा पछतावा पैदा होना चाहिए अपने विकास को देखकर कि मैंने जीवन में करा क्या है, इतना फंस गया है संसार में उसको अपने जीवन का होश ही कोई नहीं, जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म मिला वो कार्य में कर ही नहीं सका, ये क्या कर लिया मैंने। इसीलिए संसार में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी बात नहीं है संसार भक्तों से खाली होता है या गुरुओं से खाली होता है या ज्ञान से खाली होता है, सब चीजें हमेशा संसार में रहती है, संसार कभी इनसे खाली नहीं होता। महाजी भी कहते थे प्रेमी भारत की धरती में ऐसी शिष्ट है, ऐसा गुण है, यहां कोई ना कोई लाल पैदा होता ही रहता है, लाल से मतलब था सत्पुरुष, भारत की धरती में ऐसे गुण है यहां कोई ना कोई सब कुछ पैदा होता ही रहता है, तो ऐसी धरती पे हमारा जन्म हुआ है, फिर भी हम बैरन। इसीलिए रास्ते दो हैं, एक ये कि मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, चिंतित रहने की जरूरत नहीं, मेरा शरीर जब पैदा होता है तो इसके साथ भावी जिसको प्रारब्ध कहते हैं बांध दी जाती है, ये देह कहां रहना है इस देह में ये जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है, कब मरना है ये भी जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है, किसके साथ शादी होनी है मेरी या नहीं होनी है वो भी जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है, चाहे मैं कुछ भी सोचता रहूं लेकिन ये सब कुछ सारा चक्र प्रारब्ध के अधीन है, इसीलिए मेरे साथ जन्म लेते ही जन्म पत्री मेरे साथ बांध दी जाती है, यदि असली ज्ञाता है इस विद्या का तो वो बता सकता है, फोरकास्ट कर सकता है कि तेरे जन्म में क्या क्या घटनाएं घटेंगी, बदल नहीं सकता लेकिन वो भविष्य बता सकता है, लेकिन जान के करोगे क्या? जैसा भी भविष्य हो मेरा मैं ईश्वर भक्ति कर सकता हूं, क्योंकि ये आंतरिक चीज है, इसका बाहर से कोई संबंध नहीं, ईश्वर को कौन याद करेगा? जिस बुद्धि में ईश्वर का महत्व होगा वो बुद्धि ही तो उसको याद करेगी, जब वो बुद्धि निर्णय करके उसको ईश्वर को याद करने के लिए शरीर को लेकर बैठेगी तो क्या बुद्धि की कोशिश होगी? बुद्धि को पता है कि मन मेरा ही है लेकिन इतना बिगड़ा हुआ है कि मुझको ये ईश्वर की याद करने नहीं देगा, इसलिए इस मन के संयम के लिए मन के संस्कार शुद्ध करने के लिए वो ये सामाजिक जीवन सांसारिक जीवन व्यतीत करता है, अन्य से वो जानता है कि सारा संसार प्रभु भावी में चल रहा है, उसको वाणी भी कह रही है, कारण करता सो परमेश्वर गुरुमुख साजन जब मन भीतर। रास तो यहां छिपा हुआ है वाणी के अंदर, ये बड़ा ही गहरा सूत्र है कि जब वो कारण करता परमेश्वर है, इसका मतलब बाहर का जो चक्र चल रहा है, चाहे विश्व युद्ध हो रहा है, चाहे दो परिवारों में युद्ध हो रहा है, वो युद्ध ईश्वर के हुक्म में हो रहा है। भगवान कृष्ण यही तो करे अर्जुन से, ये जो महाभारत है ये मैंने पहले ही कर रखा है, अर्थात हो चुका, तू करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रारब्ध जन्म देते ही फिक्स हो जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ईश्वर का नहीं है। लेकिन मैं स्वतंत्र हूं, बुद्धि से क्या निर्णय करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर को महत्व देता हूं या संसार को महत्व देता हूं, इसके लिए स्वतंत्र हूं। ईश्वर के महत्व को समझकर मैं ईश्वर के अंदर याद संसार में रहते हुए कर सकता हूं, मन के संस्कार जो मैं लेकर आया उन संस्कारों को मैं बदल सकता हूं, प्रारब्ध को नहीं बदल सकता लेकिन मन के संस्कारों को बदल सकता हूं। तो संस्कार बदलेंगे तो स्वभाव भी मैं बदल सकता हूं, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी कोई भी स्वभाव में बना सकता हूं। महाराज कहते प्रेमी संस्कार और स्वभाव तू बदल सकता है, प्रारब्ध नहीं बदल सकता। तो प्रेमी कहता है महाराज जी जब कर्ता ईश्वर है तो मैं भोगता क्यों बन जाता हूं, कर्म का फल मैं क्यों भोगता हूं। तो महाराज जी यही कहते हैं प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है तब तक भोगता भी है। इसका मतलब मेरी गलती केवल यह है कि मैं अपने आप को देह करके जानता हूं कि मैं देह हूं, क्योंकि तो सब कुछ कह रहे हैं तू देह नहीं है, तू बुद्धि है, तू जीव है। जिसके पास बुद्धि होती है वो बुद्धिमान होता है, जिसके पास जीवन होता है चेतना होती है वो जीव होता है। तो चेतना और निर्णय ये बुद्धि के गुण है, बुद्धि के अंदर एक चेतन वृत्ति है एक निर्णय वृत्ति है, इन दो के कारण मैं मनुष्य कहलाता हूं। ये दोनों वृत्तियां पशु पक्षियों में नहीं है, मेरे अंदर है। इस वृत्ति को शुद्ध करने के लिए प्रभु अवतार ले रहे हैं, गुरु रूप में शास्त्र प्रकट कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैं इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझ रहा हूं, उसको समझने की जरूरत ही नहीं समझ रहा हूं। तो ये विज्ञान मेरे लिए है। हम में से यदि किसी ने कोई तप किया है, कोई साधना की है, इस वाणी को समझकर जीवन व्यतीत किया है, वो अंदर से जानता है कि मैं किसी का प्राण तो नहीं बदल सकता लेकिन अपनी मन स्थिति में बदल सकता हूं। मैं मोह के साथ परिवार का पालन करूं या विवेक के साथ परिवार का पालन करूं, इसमें स्वतंत्र हूं। यदि विवेक के साथ संसार का इस परिवार का पालन करता हूं तो क्या होगा, प्रभु की याद मेरे मन में हमेशा बनी रहेगी, अंतर्यामी प्रभु के पास मैं रह रहा हूं इसलिए मेरी नजदीकी निरंतर बढ़ती रहेगी, और साथ में परिवार का पालन मोह भाव से नहीं मैं सेवा भाव से करने में सफल हो जाऊंगा। मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसकी लंबी बीमारी चले तो मैं कितना चिंता युक्त रहता हूं, कितना उसके लिए पुरुषार्थ करता हूं, कितना उसके लिए रोता पीटता हूं मैं। लेकिन मुझको पता नहीं मैं इसमें मूर्खता क्या कर रहा हूं, मुझको पता ही नहीं होता इसका, कर्म कर रहा हूं पुरुषार्थ भी कर रहा हूं लेकिन इसमें मूर्खता क्या हो रही है, मेरा विकास की जगह पतन हो रहा है। मूर्खता केवल यही है कि मैं मोह भाव से, मोह का मतलब उसको भी शरीर समझ रहा हूं अपने आप को भी शरीर समझ रहा हूं। ये मूढ़ भाव जो है ये मुझको कहीं का नहीं छोड़ता। मानव देह मिली है इसको देह को मंदिर कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रभु विराजमान है और मैं भी जीव हूं तो भक्त भी तो इस देह के अंदर विराजमान है। तो भक्त ने भगवान की साधना करनी थी, प्रेम करना था और शरीर से निष्काम सेवा करनी थी होश में रहते हुए, तो मैं किसी के लिए क्यों रो, मैं किसी का दुख दूर करने के लिए पूरा निष्काम होकर प्रयास करता हूं, निष्कामता में सेवा अच्छी तरह से होती है, लेकिन मेरा विकास होगा। मोहभाव से करता हूं तो मेरा पतन होता है, तो अविवेक के कारण मेरा निरंतर पतन भी होता है और निरंतर कर्म में रत भी रहता हूं। क्या हो रहा है? इसीलिए मनुष्य जन्म जब प्रभु ने हमको दिया है तो होश में दिए हैं, इसीलिए कारण करता परमेश्वर है तो मैं कौन होता हूं? तो ना मेरे अंदर अहम रहना चाहिए, ना जो वस्तुएं मुझको मिली है, जो घर मुझको मिला है, हस्ता महरी मुझको मिल गया हो, लेकिन मैं हमेशा गरीब ही रहता हूं। मैं उसको मेरा कहता ही नहीं, मेरे तो भाव ही नहीं था कि ये मेरा, ये सेवा के लिए मिला है, इसको सेवा में लगा। तब पता लगता है ये वाणी क्या करी है, दीन गरीबी धार के कर्म करे निष्काम, मंगत अंतर्गत माही पर से निर्बंध। ओम ग्रंथ से।